जय धवला, पुस्तक 10वीं, लेक्चर नंबर 4।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाऊनं, वेदगवेदगवेदगं अवेदगं वेदगं प्रसंसिद्धम्। सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्चं वेदगमहायायम्।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दसवीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार चल रहा है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 24 पर आ गए, 24। अभी अपने यहाँ उत्तर प्रकृति उदीर्णा संबंधी चर्चा चल रही है, उसमें भी 24 संयोग द्वार है। उसमें से अभी हमने समुत्कीर्तना देखी, सर्व नो सर्व, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य उदीर्णा अजघन्य उदीर्णा, फिर उसके पश्चात सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, उसके बाद एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा काल,
काल देख रहे हैं, बस काल देख रहे हैं,
काल ही देख रहे हैं। तो काल में हमने ओक के अपेक्षा बात देखी थी, और कालानुगम अभी हम मार्गणाओं में देख रहे थे। नारकी की बात देखी, तिलियंचों की भी बात देखी हमने,
मनुष्यों
में अभी देखेंगे 24 पृष्ठ पर। मनुष्यों में पंचेंद्रिय तिरियंचों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है, इनमें सम्यक्त्व के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। तिरियंच में जघन्य प्रेरणा बेन कितना देखा था याद है, सम्यक प्रकृति का उदीरणा का जघन्य काल एक समय कैसे अश्विन मैंने एक दिखा दिया इसलिए एक समय नहीं, हाँ एक समय बोलो
कृतकृत्य वेदक किया कैसा, एक समय
कृतकृत्य वेदक
आवली प्लस एक समय वाला,
यानी वो जब
आवली
एक समय की उदीरण अभी बाकी है तब वो वहाँ जन्म लिया उसने कृतकृत्य वेदक। तो एक समय नरक में भी घटित होता है, तिरियंच में भी घटित होता है, परंतु मनुष्यों में क्यों नहीं घटित होता है? हाँ, मनुष्य से मनुष्य में गया, मार्गणा कहाँ बदली? तो यहाँ भी मनुष्य था, वहाँ भी मनुष्य हुआ, तो उसकी मार्गणा वही की वही रही। तो
हो सकता है
सम्यक प्रकृति की बात कर रहे, सम्यक प्रकृति की उदीरणा जहाँ उदय है वहाँ होगी, वहाँ तो श्रेणी में तो
स्थिति उपशम
है, और ऐसा है कोई औपशमिक समय दृष्टि है मान लेते हैं, और बाद में वेदक हुआ
उदीरण चालू होगा, पर एक समय में मरण
नहीं होगा उसका। औपशमिक में से वेदक में आते ही एक समय में मरण नहीं होगा, नहीं तो मनुष्यों में भी कह देते हैं ना एक समय, और अन्यत्र भी घटित होता उस अपेक्षा से, परंतु वेदक में आते ही मरण नहीं होगा उनका। तो जघन्य काल अंतर्मूर्त बता अभी कैसे घटित होगा, अश्विन भी आप बोलो।
समय तो में एक अंतर्मूर्त पता है,
समय दृष्टि रहा एक अंतर्मूर्त, वहां वो कृतकृत्य की सोचना मत, क्योंकि उसके पहले वेदक समय दृष्टि है, तो लगातार वो
उदीर्णा चल रही,
उदीर्णा ही करता आया है, यानी अंतर्मूर्त उसके वेदक सम्यक्त्व का जघन्य अंतर्मूर्त उस अपेक्षा से घटित होगा। सम्यक प्रकृति का, तथा तीनों वेदों के उदीरक का जगन्य काल एक समय है। ये कैसे बोलो? श्रेणी में
नहीं, पुरुष वेद का तो वहाँ पे घटित नहीं होगा।
क्यों?
अच्छा,
नहीं
मनुष्य में,
मनुष्य की बात है, ओघ में घटित नहीं हुआ था,
यहाँ पे घटित हो जाए।
देखो फिर से सुनो, ओघ में पुरुष वेद के जगन्य उदीरणा का काल कितना देखा था? पुरुष वेद का
ओघ में जगन्य काल अंतर्मुख
क्यों? एक भाव किया उसने, अंतर्मुख वाला पर्याप्त का एक भाव किया। अब यहाँ मनुष्यत्रिक की अपेक्षा बात है, वहाँ मनुष्यत्रिक में ओघ की अपेक्षा स्त्रीवेद और नपुसक वेद का एक समय ऐसा घटित किया था कि स्त्रीवेद या नपुसक वेद से श्रेणी चढ़ा, अनुदीरक हुआ,
देव में चला,
फिर उतरते समय उदीरना शुरू की, एक समय में मरकर देव में गया। ओघ में तो घटित होगा, परंतु ओघ में पुरुष वेद का एक समय घटित नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ भी पुरुष था, वहां भी पुरुष हुआ। परंतु मनुष्यत्रिक में अगर घटित करना है तो पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ा, फिर उतरा, पुरुष वेद की उदीरणा की, एक समय में मरकर देव हुआ, तो मनुष्य वाली मार्गणा बदल गई, तो मनुष्य में एक समय घटित हुआ, ओघ में एक समय घटित नहीं हो रहा था, क्योंकि पुरुष वेदी का पुरुष वेदी रहा। परंतु यह मार्गणा कौन सी हमारी?
मनुष्य
की, तो ये मनुष्य में से देव में गया, तो मनुष्य में एक समय के लिए उदीरक रहा, यानी यहाँ मनुष्य था पुरुष वेदी, वहां देव हुआ पुरुष वेदी, तो मनुष्य मार्गणा उसके भी समाप्त हो गई। इसलिए तीनों वेदों का एक समय कहा। ओघ में हमने दो ही वेदों का एक समय घटित किया था, मिला आपको? 24 पृष्ठ पर है हम। इस प्रकार मनुष्य पर्याप्तकों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व के उदीरक का जघन्य काल एक समय है, अभी आप बोलो ये एक समय घटित करो। हाँ। मनुष्य पर्याप्तकों में एक समय घटित करना है आपको, सम्यक प्रकृति का। अरविंद भाई कौन ट्राई करेंगे?
सम्यक प्रकृति का जी,
सम्यक प्रकृति का क्या दो?
अच्छा, यहाँ पे तो उपशम श्रेणी से उतरते समय उदीरक हो गया और मरण हो सकता है,
तो भी उदीरक ही रहेगा,
मनुष्य मारना चल रही है ना।
हाँ।
तो एक समय के लिए उदीरणा हुई, द्वितीय उपशम खत्म हुआ, एक समय के लिए उदीरक रहा और देव में चला गया, ऐसे ही घटित होगा?
यानी उपशमिक में से वेदक हुआ,
द्वितीय उपशम,
द्वितीय उपशम
में भी मरण है और द्वितीय उपशम के पश्चात भी मरण,
वेदक में भी मरण है,
तो द्वितीय उपशम से वेदक हो गया और एक समय में मरण हो गया, देव में चला गया,
या ऐसे भी ले सकते हैं।
बाकी तो समय तो कि एक समय के लिए उदीरणा कहाँ पे भी नहीं होगी ना, अंतर्मुख तो चलेगी।
नहीं नहीं, जैसे हमने तिरंच में एक समय कैसे किया था?
नहीं, पर यहाँ पे तो वेदक है, उदीरणा चल रही है और कृतकृत्य वेदक हो गया तो भी उदीरणा चलेगी, तो एक समय घटित नहीं होगा।
तिरंच में एक समय कृतकृत्य वेदक में घटित किया। बराबर,
अवली प्लस एक समय काल तक वो,
क्योंकि यहाँ मनुष्य था और वहाँ तिरंच में जन्मा, तो एक समय में उसका हुआ। अब यहाँ भी पर्याप्त तो मनुष्य था परंतु नपुसक वेदी था, और वहाँ भी पर्याप्त मनुष्य हुआ परंतु पुरुष वेदी रहा,
वो एक सभी
वो हो सकता है
वेदक।
हाँ, पहले हमने मनुष्य नहीं में घटित किया था, श्रीवेद वाले में, समझ में आएगा? यहाँ कृतकृत्य यानी क्षपणा कर रहे दर्शन मुनि की,
नपुसक
वेदी जीव था, कृतकृत्य वेदक में आया है, अभी उसका एक समय और एक अवली बाकी है, तब मरकर वो भूभूमि का मनुष्य हुआ, तो वहाँ तो पुरुष वेद में जन्मा, तो यहाँ वो उसकी मार्गणा वही की वही रही ना, यहाँ भी मनुष्य पर्याप्त था, वहाँ भी मनुष्य पर्याप्त है,
खाली पुरुष,
परंतु मनुष्य पर्याप्त में दो ही वेद है, यहाँ नपुंसक वेदी था, वहाँ पुरुष वेद में जन्म, नपुंसक वेदी पर्याप्त मनुष्य दोनों होते, पर्याप्त में दोनों होते, इसलिए उसकी मार्गणा तो वही रही ना, नपुंसक में से पुरुष वेद गया फिर भी मार्गणा वही रही।
और द्वितीय अपशब्द की अपेक्षा भी घटित हो सकता है,
घटित हो सकता है क्योंकि वेदक में आया है और एक समय में मरा है,
क्योंकि द्वितीय अपशब्द में भी मरण है, जो पश्चात
वेदक वहाँ पर भी होगा ही। यानी वहाँ तो उसका देव हो गया और यहाँ नपुंसक वेदी मनुष्य में से कृतकृत्य वेदक होकर भोग भूमि में पुरुष वेदी हो गया। तो एक समय वहां घटित होगा, इसी प्रकार देखो मनुष्य हमें आगे पढ़ाई नहीं हमने, मनुष्य पर्याप्त को में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें सम्यक्त के उदीरक का जगने काल एक समय है, इनमें स्त्रीवेद की उदीरणा नहीं है। मनुष्य पर्याप्त को में तो नहीं होती क्योंकि नपुंसकवेद और पुरुषवेद की उदीरणा होती है, तथा मिथ्यात्व के उदीरक का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त तक मिथ्यात्व है। मनुष्यनियों में सामान्य मनुष्यों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व के उदीरक का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। तो ये विशेषता क्या बता, यानी अन्य बातें घटित नहीं होती, ये होती है, तथा इनमें पुरुष वेद और नपुंसक वेद की उदीरणा नहीं होती। जैसे पुरुष वेद में अभी मनुष्य पर्याप्तकों में हमने एक समय की बात देखी थी सम्यक्त के उदीरक का, वैसे मनुष्यनियों में होगा कि नहीं होगा,
मनुष्यनि में
सम्यक्त की उदीरणा एक समय वाली होगी कि नहीं होगी
मनुष्यनि में,
जैसे आपने जो बात बताई
द्वितीय उपशम की अपेक्षा,
द्वितीय उपशम में से वेदक हुआ एक समय के लिए उदीरक हुआ, इन्हें वो बात यहाँ लिखी नहीं, फिर भी हम सोच सकते हैं अभी यहाँ कुछ आएगी तो देखेंगे।
शासादर से जो मिथ्यात्व में जाएगा उसका एक समय में मरण हो सकता है,
हाँ शासादर में होता है तो मिथ्यात्व में हो,
हाँ तो पीछे यहाँ पे अंतर्मुख बताया तो एक समय भी हो,
कहाँ पर अंतर्मुख
मिथ्यात्व की उदीरणा का जगने का, यहाँ पे अंतर्मुख बताया ना,
मनुष्यनियों में सामान्य मनुष्यों के समान मिथ्यात्व
के उदीरक का जगने काल,
मिथ्यात्व के उदीरक का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है,
शासादन में से जो मिथ्यात्व में जाएगा तो एक समय पश्चात मरण हो सकता है,
मनुष्य ने मार्गणा बदल जाएगी,
तो सामान्य में भी ले सकते हैं ना,
ना 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 मिथ्यात्व के उदीरक का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है, अभी जो खास लिखा है तो उसका कुछ विशेष होना चाहिए, अभी विशेषार्थ में पढ़ेंगे हम। देखो पहले पंचेंद्रिय तिर्यंचों में सम्यक्त के उदीरक का जगने काल एक समय कहे आए हैं, ये कैसे कहा था कि मनुष्य में कृतकृत्य वेदक किया, एक समय वहां जाकर उसने उदीरणा की और फिर आवली में प्रवेश हो गया, इसलिए यहाँ सामान्य मनुष्यों में उसका निषेध करके वह अंतर्मूर्त बतलाया, सामान्य मनुष्य क्योंकि यहाँ भी मनुष्य था वहां भी मनुष्य हुआ, वैसे मनुष्य पर्याप्तकों में यह काल एक समय बन जाता है क्योंकि अभी कौन सा यहाँ बता रहे, देखो
मनुष्य
जिसने पहले मनुष्यायु का बंद किया है ऐसा मनुष्यनी जीव, अभी पर्याप्तकों में मनुष्यनी क्यों लिया उन्होंने, अच्छा वहां पर्याप्त होता है, अच्छा अच्छा ऐसा मनुष्यनी जीव यदि क्षायिक सम्यक्त को उत्पन्न करता हुआ, अच्छा वो पहले पर्याप्त था तो उसका समय ज्यादा हो जाएगा, हमें एक समय घटित करना है, नपुंसक वेदी मैंने बताया वो स्त्रीवेदी के लेना है, पहले भी हमने एक बार ऐसी बातें देखी थी, तो पहले मनुष्य नहीं था और सम्यक्त की उदीर्णा में एक समय शेष रहने पर, ये बात ख्याल में थी, किसी ने मनुष्यायु का बंद किया, मनुष्य नहीं था, दर्शन मुनि की क्षपना कर रहा है, एक समय और अवली बाकी है, तब जाके भोगभूमि में जन्म लिया
पुरुष,
तो वहाँ मनुष्य पर्याप्त कहलाएगा, यहाँ तो उसको मनुष्य नहीं कहते थे, मनुष्य नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्याप्त का पर्याप्त रहा तो उसका समय ज्यादा बढ़ेगा। यानी मैं कुछ अलग तरीके से सोच रही थी, नपुंसक वेग को निकाल देना, यानी मनुष्य नहीं है, पहले नपुंसक वेग मनुष्य नहीं था, पहले मनुष्य नहीं था, यानी मनुष्य नहीं में से वो पर्याप्त मनुष्य हुआ भोगभूमि का। नहीं नहीं, नपुंसक वेद होगा तो उसका काल बढ़ेगा, यहाँ भी नपुंसक वेद ने वो, यानी जब तक उसका वेदक सम्यक्त्व का काल था, तो वेदक सम्यक्त्व का काल था उसका, यहाँ नपुंसक वेद यानी पर्याप्त ही था और वहां भी पर्याप्त था, तो मार्गणा वही की वही रही, तो उसका काल बढ़ जाएगा। यानी मैंने जो सोचा था ये बात वही है, मगर वहां मनुष्य नहीं लेनी चाहिए, मनुष्य नहीं से पर्याप्त मनुष्य हो गया। पहले मनुष्य नहीं थे और उसने दर्शनों की क्षपणा की, क्षपणा में कृतकृत्य वेदक हो गया, और एक समय और एक अवली बाकी थी तभी वहां भोगभूमि का मनुष्य उत्पन्न हुआ, तो वो तो पुरुष वेदी है, यानी वहाँ पर्याप्त मनुष्य कहेंगे, पहले उसको मनुष्य नहीं कहते थे, अब पर्याप्त मनुष्य कहेंगे, वहाँ एक समय के लिए सम्यक प्रकृति की उदीर्णा की, तो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा का काल एक समय, यहाँ भी अपना उदीर्णा का प्रकरण चल रहा है, जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होती है, यानी उदयावली में प्रवेश करके उदय होना चाहिए, यानी अपकर्षण के द्वारा उदयावली में आना, उसको यहाँ उदीर्णा कहते हैं। एक एक स्थिति गलने के कारण जो उदयावली में प्रवेश करते हैं उसको उदीर्णा नहीं कहते, वो तो सामान्य से उसकी स्थिति पूरी हो रही है। उदयावली में तो दोनों ही पाए जाएंगे निषेक, जो उदय रूप नहीं है वो भी और उदय रूप है वो भी, परंतु उदीर्णा किसे कहेंगे, जो ऊपर के निषेक अपनी स्थिति कम करके उदयावली में आ जाते डायरेक्ट, उसको कहेंगे उदीर्णा। तो उदीर्णा किसकी होती है, तो जिसका उदय है उसकी होती है। अब यहाँ एक समय की सम्यक प्रकृति में एक समय की उदीर्णा कैसे कहेंगे, कृतकृत्य वेदक है यानी अंतर्मूर्त के निषेक बाकी है, अब उसके प्रति समय उदयावली को छोड़कर ऊपर के निषेकों में से उदयावली में आ मिलते हैं। अब ऐसा होते होते आवली और एक समय इतना ही बाकी रहा, तो वो एक समय जो ऊपर है आवली के ऊपर जो निषेक है उसमें से परमाणु कुछ निकल कर उदयावली में नीचे वनथर्ड में दिए जाएंगे, तो उसको भी उदीर्णा कहेंगे। तो एक अंतिम पॉइंट है, जब उदयावली मात्र निषेक बाकी रहते हैं तभी उदीर्णा कहाँ होगी, अभी उसमें अपकर्षण वगैरह वो कुछ नहीं होगा, उदयावली के ऊपर का उदयावली में देना उसको हमने उदीर्णा कही, वो तभी रुक जाएगा ना। एक समय के लिए उदीर्णा हुई, वो कहाँ हुई, उस भव में जाने के बाद हुई, वहां कौन सी मार्गणा शुरू हुई, मनुष्य पर्याप्त, और पूर्व भव में कौन सी मार्गणा थी, मनुष्य नहीं थी, तो मनुष्य पर्याप्त में एक समय घटित हुआ सम्यक प्रकृति के उदीर्णा, ऐसे ही पीरियंचो में घटित किया था, ऐसे नारकी में भी घटित किया था। सामान्य मनुष्यों में मनुष्य का, सामान्य मनुष्य अगर हम अपेक्षा लगाएंगे
तो वहाँ पे ये
उत्तर प्रकृति की ही बात चल रही है, सम्यक प्रकृति की ही बात चल रही है, आलाप आलाप सामान्य मनुष्य ले रहे हो या मनुष्य पर्याप्त ले रहे हो, ये बात है। तो मेरा प्रश्न है, मनुष्य नहीं में एक समय घटित होगा कि नहीं होगा, जैसे हमने पर्याप्त मनुष्य में एक समय घटित किया, तो मनुष्य नहीं में एक समय होगा कि नहीं होगा, मनुष्य नहीं में सम्यक प्रकृति का एक समय घटित होगा कि नहीं होगा। हाँ? वो मनुष्य नहीं होगा, वो जो पुरुष वेदी होगा, इसलिए वो मनुष्य में जन्म नहीं लेगा। यानी आप जो द्वितीय उपशम की बात करते वो यहाँ नहीं उठाई उन्होंने। देखो ये नीचे से सामान्य मनुष्यों में मनुष्य का मनुष्य रहा, मनुष्य नहीं भी सामान्य मनुष्य में है और पर्याप्त मनुष्य भी सामान्य में है, तो सब कुछ है, लब्धियां पर्याप्त सही सब कुछ। वहां तो एक समय घटित नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ भी वो मनुष्य था और वहां भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य यहाँ भी था वहां भी। मनुष्य नहीं यहाँ पर है और वहां पर्याप्त मनुष्य है तब घटित होगा। अब आलाप बदलेंगे तो घटित होगा, सामान्य मनुष्य कहेंगे तो घटित नहीं होगा। देखो नीचे से दूसरी लाइन, तीसरी, जिसने पहले मनुष्यायु का बंध किया है ऐसा मनुष्य जीव यदि क्षायिक सम्यक्त को उत्पन्न करता हुआ सम्यक्त की उदीरणा में एक समय शेष रहने पर मरकर यदि पर्याप्त मनुष्यों में उत्पन्न होता है तो, यानी यदि यानी वो तो होने वाला ही है, मनुष्यायु बांध ली है और अभी इतना शेष है तो वो पर्याप्त मनुष्य ही होगा, उसके सम्यक्त की उदीरणा का जघन्य काल एक समय बन जाता है। परंतु ऐसा होने पर भी सामान्य मनुष्यों में इसकी उदीरणा का जघन्य काल अंतर्मूर्त ही बनता है, क्योंकि पहले भी वो सामान्य मनुष्य था, बाद में भी सामान्य मनुष्य है, आलाप अलग अलग है। अगर सामान्य मनुष्य में हम भेद डालते हैं मनुष्य नहीं और पर्याप्त मनुष्य, तो घटित होता है। यही कारण है यहाँ पर सामान्य मनुष्यों में सम्यक्त्व के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त बतलाया। तो वेदक सम्यक्त्व में रहने का अंतर्मूर्त काल हम यहाँ कहेंगे। सामान्य मनुष्यों में तीनों वेदों के उदीरक का जघन्य काल एक समय, उपशम श्रेणी में एक समय तक उस वेद की उदीरणा कराकर मरण की अपेक्षा कहा है। जिस वेद में जो है मनुष्यों में तो घटित होगा, ओघ में पुरुष वेद में एक समय घटित नहीं होगा। क्यों? यहाँ उपशम श्रेणी से उतरते समय एक समय के लिए पुरुष वेद की उदीरणा की और मरकर देव में गया तो वहां भी पुरुष वेद ही हुआ। तो यदि हम ओघ में देखते हैं तो घटित नहीं होगा। मनुष्यों में देखेंगे तो घटित होगा क्योंकि उसकी मार्गणा बदल गई ना, पहले मनुष्य था फिर देव हो गया। ओघ में तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, चारों गति में जहां कोई घटित होता है तो घटित करेंगे। तो वहां ओघ की अपेक्षा पुरुष वेद के उदीरक का एक समय घटित नहीं हो रहा था, मनुष्य त्रिक की अपेक्षा घटित होगा। पर्याप्त मनुष्यों में पुरुष वेद और नपुसक वेद के उदीरक का तथा मनुष्यनियों में स्त्री वेद के उदीरक का जघन्य काल एक समय इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार ने वो श्रेणी की अपेक्षा अभी तक हमने नारकी की बात देखी, तिरियंचों की, मनुष्यों की, अब देवों की देखेंगे। देवों में मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। मंजू बहन ये कैसे होगा, आप तो आ जाइए ना, पहले सोचना। उदीरणा उसकी होती जिसका उदय है, मिथ्यात्व का उदय किसके है, कौन से गुणस्थान में है? पहले ही गुणस्थान में उसका उदय है तो अंतर्मूर्त तक ही मिथ्यात्व में रहेगा। ये कब बनेगा? हाँ, समय दृष्टि है, मिथ्यात्व में आया और फिर समय को प्राप्त किया तो अंतर्मूर्त तक मिथ्यात्व में रहा, तो अंतर्मूर्त तक उसकी मिथ्यात्व की उदीरणा हुई, ये उसका जघन्य काल। ओघ में भी हमने ऐसा ही देखा था ना। और उत्कृष्ट काल 21 सागर है। क्यों? अभी आप ही बताएं, आसान है। हाँ, नवे ग्रह वेग में ऐसा लेना, अभी उसका पूरा एक्सप्लेन करो, पूरा 21 सागर लेना क्या नहीं लेना? लेना। क्यों? वहां तो मार्गणा शुरू हो गई उसकी, मिथ्यात्व में ही जन्मा और मिथ्यात्व में ही मरा, 31 सागर की आयु लेके आया है, तो देव की अपेक्षा वहां हो गई ना 31 सागर। ख्याल में आई माइंड में, 31 सागर है तो ऐसा नहीं कि वहां समय दृष्टि बनाओ फिर मिथ्या, तो ये जरूरी नहीं है। वो देव में गया, मिथ्या दृष्टि रहा थ्रू आउट, और मिथ्या तो ही मरकर नीचे मनुष्य में आ गया। तो पहले भी मनुष्य था, बाद में भी मनुष्य है, तो बीच में देव था। तो देव में मिथ्या तो के उत्कृष्ट उदीर का काल जो है वो कितना रहा, 31 सागर। तो नवे ग्रहवेग में घटित होगा। सम्यक्त्व के उदीरक का जघन्य काल एक समय, प्रतिभाता आपको ये बताना है, सम्यक प्रकृति की उदीरणा का एक समय घटित करना है। हाँ, अंतिम समय में क्या हुआ, समय प्रकृति की उदीरणा कभी होती है, उसकी जब उदय उसका है, उदय किसके होता है, वेदक समय दृष्टि, औक्षमिक शायक वाले के नहीं है, वेदक समय दृष्टि। अब उसमें वेदक समय दृष्टि के एक समय के लिए देव में उदीरणा चाहिए हमें, कृतकृत्य वेदक, जैसे अभी हमने मनुष्य में देखा था, तिर्यंच में देखा था, नरक में देखा था, कृतकृत्य वेदक वाला देव में उत्पन्न हुआ, एक समय के लिए उदीर्णा की, फिर उदीर्णा मिट गई, तभी एक समय घटित हुआ। और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, मंजू भाई आपको बताना है, मंजू भाई 33 सागर सम्यक तो प्रकृति की उदीर्णा करने वाला कौन सा जीव है, 33 सागर वाला कौन है, सर्वार्थ सिद्धि वाला है, एंड में क्या, कुछ नहीं, एंड में कुछ नहीं, एंड में उसको सम्य दृष्टि रखना, कौन सा वाला, हाँ क्षायिक तो नहीं ले सकते हम, वेदक में जन्मने वाला, वो द्वितीय क्षम वाला भी नहीं लेना, क्योंकि उसके थोड़े समय वेस्ट हो जाएगी ना। उसने विसंयोजना की तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, विसंजना कराना कि नहीं कराना, बोलो लक्ष्मी। हाँ, 33 सागर के लिए उत्कृष्ट जो उसका काल बताया है चलेगा ना, उसमें क्या फर्क
पड़ेगा,
समय प्रकृति का तो उदय ही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, बराबर। हाँ, अब सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय, अरति शोक भय और जुगुप्सा का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है। सम्यक मिथ्यात्व का उदीर्णा का काल कितना है, याद है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय कब होता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय किसके होता है, तीसरे गुणस्थान, तो तीसरे गुणस्थान का काल जो है अंतर्मुहूर्त, तो उसका उसका उदीर्णा का काल, वो तिर्यंच हो या मनुष्य हो या देव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों है, 16 कषाय में
एक समय, एक समय और अंतर,
एक समय और अंतर, देखो 16 कषाय एक साथ नहीं लेना है,
एक एक कषाय,
तो कभी क्रोध का उदय कभी मान का ऐसा होता है ना, चेंज होता रहता है, और फिर यहाँ देव भी है, ऐसा भी उसमें घटित करना आसान है, किसी क्रोध का उदय शुरू और मरकर अन्य पर्याय में चला गया तो भी एक समय घटित होगा, और उस पर्याय में रहते हुए भी एक समय पहले घटित करके देखा था हमने,
खाली हर्ष रति का ज्यादा हो गया,
अभी अरति शोक भय जुगुप्सा सब में सामान्य तिर्यंचों के समान, देखो तिर्यंचों को देख लो,
अंतर्मूर्ति ना,
इनको देख लो ना, ये नहीं आए थे ना कल, देखो 23 पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन तिर्यंचों में उन्होंने बताया था, हम फिर रोग में देखेंगे। 16 कषाय और 6 नौ कषायों के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। ओघ में कितना देखा था इसका,
ओघ में तो मिनिमम अंतर्मुहूर्त देखा था ना,
ये 22 पेज पर है, काल की बात है, वहां भी एक समय लिया था, 40 नंबर के पॉइंट सोलर कषाय भय और जुगुप्सा का जगन्य काल एक समय लिया था वहां पर भी
हास्यरति का
हास्यरति को छोड़ा था एक समय और छह महीना बताया था
और अतिशोक का
ओघ में बताया था परंतु तिर्यंच में नहीं बताया था ओघ में भी जो घटित हुआ था छह महीने वो देवों की अपेक्षा हुआ था तिर्यंच में देखो तिर्यंचों में तो छह नौकशायों को एक साथ लिया था है ना छह नौकशाय के इसलिए एक साथ लिया था कि वो वेदों को उसमें से छोड़ दिया था उन्होंने अब यहाँ हम देवों की बात देखते फिर आना अपने पृष्ठ संख्या 25 पर तो वहां तो सोलह कषाय अरति शोक भय जुगुप्सा का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है यानी वहां एक समय का अंतर्मूल हास्य रति का भंग ओग के समान है यानी एक समय से लेकर छह महीना ये देवों की अपेक्षा ही ओग में घटित हुआ था
ये आरती और शोक का एक समय अपने ओग में देखा था वो मरण की अपेक्षा लेना है
ओग में मरण होने से कोई डिफरेंस नहीं होता
नहीं छठे गुण स्थान में आया और मरण हो गया
यहाँ उदय की बात है बंध की नहीं बंध तो अंतर्मूर्त होता है
हाँ नहीं पर ये एक समय आरति और शोक का एक समय हो सकता है अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त ही होगा ना
देखो हो सकता है ऐसा प्रश्न ही नहीं है ये क्यों नहीं होता ये हमने को सोचना है जो सूत्र में बताया है तो हमें हो सकता है कि बात ही नहीं होती वहाँ पर ख्याल में हमें ऐसा सोचना यहाँ लिखा है तो ये कैसे हो सकता है क्या लिखा है यहाँ पर देखो
एक समय बताया है
एक समय बताया है अच्छा उसके उदय की विच्छित्ति कब होती है
नहीं उदीर्णा की विच्छुति छठे गुण स्थान में होती है उदीर्णा उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही
अरती
और शोक नहीं अरती शोक की
बंध का घोटाला कर रहे हैं आप बंध की विच्छुति को सोच रहे हैं उसका उदय आठवें में
है हाँ।
तो आठवें के एक अवली जब तक उदय है उसके बाद तक उसकी उदीर्णा तो होगी यहाँ क्या बात कर रहे हैं उदय तो चेंज हो सकता है
हाँ उदय चेंज होगा तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में चेंज होगा वो मेरा क्वेश्चन है
नहीं नहीं वही तो एक समय वाला भी हो सकता है
एक समय वाला भी ले सकते हैं
क्योंकि सब जगह हमने सभी मार्गणाओं में देखा ओग में भी देखा और मार्गणाओं में भी देखा एक एक समय बताया था मनुष्य में बताया था कि नहीं बताया था उन्होंने बताया था वो तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान पंचेंद्रिय तिर्यंचों में हमने देखा सोलह कषाय नौ कषाय का एक समय नारकियों में भी कितना देखा था वहां भी एक समय
एक समय नारकी में भी एक समय लिया
वहां तो हास्य रति को भी एक समय लिया और यहां तो शोक रति को एक समय ले रहे हैं देव में नारकी में हास्य रति को एक समय वाला लिया और देव में शोक रति को एक समय ले रहे हैं इसका अर्थ एक समय में उदय चेंज हो सकता है उसका देखो हम जो देवों में पढ़ रहे थे चौथी लाइन हास्य और रति का भंग ओघ के समान है ओघ में बताया था एक समय से लेकर छह महीने स्त्री वेद के उदीरक का देवों की बात चल रही है स्त्री वेद के उदीरक का जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 55 पल्ले है प्रतिभा का ही आपको बताना है 55 पल्ले कैसे होगा स्त्री वेद के उदीरणा का उत्कृष्ट काल स्त्री वेद की उदीरणा किसके होगी जिसके उदय है किसको उदय हो जला सोचने दो ना उसको किसको होगी उदय किसको होगा स्त्री वेद का उदय देवों में किसको होगा देवियों को होगा तो देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है 55 पर यहाँ लिखा ना स्त्री वेद के उदीरक का जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 55 पल्ले पूरी आयु प्रमाण श्रीवेद का उदय है तो उसका उसकी उदीरणा भी चले। अब पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य काल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट काल 33,000, क्योंकि वहां के देवों की इन जनरल बात चल रही है। अलग अलग उसमें भेद करेंगे तो उसके अलग अलग आयु का जो प्रमाण है वो अलग अलग होगा। भवनवासियों से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के उदीरक का जघन्य काल क्रम से अंतर्मूर्त और एक समय। क्रम से ने भवनवासियों के लिए अंतर्मूर्त। अब ये बताओ आप मंजुताई, भवनवासियों में सम्यक प्रकृति का और मिथ्यात्व का भी एक अंतर्मूर्त कैसे कैसे घटित होगा? समय को प्राप्त किया तो समय प्रकृति की उदीरणा की एक अंतर्मूर्त के, मिथ्या तो मैं अंतर्मूर्त के लिए गया तो मिथ्या तो की अंतर्मूर्त की बराबर है। अब नव ग्रह वेग में नवे ग्रह वेग तक के देवों में सम्यक्त्व का एक समय है, भवनवासी उनके लिए अंतर्मूर्त है, ये अन्नमूर्त हुआ है अंतर्मूर्त। वहाँ कृतकृत्य वेदक जाता है स्वधर्म से लेकर तो वहाँ वो घटित होगा, और इनमें कृतकृत्य नहीं जाता इसलिए वहाँ अंतर्मूर्त सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि रहने की अपेक्षा मिथ्या को मैं उनमें घटित कर दिया। ये दोनों को एक साथ क्यों लिखा, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के उदीरक का? अलग अलग लेना तो भवनवासियों और नवे ग्रह में अलग अलग लेना कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में अलग अलग लेना, क्या दोनों के लिए दोनों होगा?
नहीं, भवनवासी के लिए अंतर्मूर्त लेना है ना?
भवनवासी के लिए सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त लिया
और मिथ्यात्व का भी अंतर्मूर्त होगा,
अंतर्मूर्त लिया।
भवनवासी में तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त होगा। क्योंकि मिथ्यात्व में जाएगा तो भी अंतर्मूर्त तो रह गए।
आपने जैसे बोला था शासन की अपेक्षा वो लगा सकते कि
नहीं, पर वो कहाँ पे भी नहीं लिया,
नहीं लिया।
सोच रहा था कि मिथ्यात्व में जाएगा तो अंतर्मूर्त तो रह गए वहां पे,
परंतु एक क्रम से एक समय जो बताया है वो क्रम से एक समय मिथ्यात्व में घटित होगा कि नहीं होगा? ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के लिए एक समय और वो घटित होगा, तो एक जो एक समय है वो भवनवासियों में घटित नहीं होगा, यानी ये दोनों देवों में भी दो लिए और यहाँ भी ये दो लिए। क्या लिखा, भवनवासियों से लेकर नवग्रहवेग तक के देवों में, यानी एक ग्रुप बनाया, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के उदीरक का जघन्य काल क्रम से अंतर्मूर्त, यानी मिथ्यात्व के लिए अंतर्मूर्त और सम्यक्त्व के लिए एक समय,
एक समय। पर भवनवासी में
तो
एक समय घटित
के लिए एक समय क्यों घटित किया, भवनवासी से लेकर क्यों कहा?
ऐसे हो सकता है जो
ऊपर देखेंगे, शायद उन्होंने एक करके बाद में अलग अलग बताया होगा। हाँ, नवरी भवन वाणवेन ज्योतिषी सम्मत जहन अंतमुत उत्कस सगठिदी देशुना बाद में बताया है।
28 के सत्ता वाला जो वेदक समित को प्राप्त करता है उसका एक समय में भरण हो सकता है? उपशम वाला नहीं, वेदक वाला
समय को प्राप्त करते एक समय में तो मरण नहीं होगा।
नहीं, वेदक समय में
होने दो, कोई भी होगा, वेदक के भी नहीं होगा। देखो, ये अंतर्मूर्त ही होना चाहिए तथा उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। आगे बताया, क्योंकि मुझे प्राकृत में दिख गया है, पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, क्योंकि देव जो है उनके पुरुष वेद का उदय है उदीरणा चलेगी, तो जघन्य काल कितना अपनी जघन्य आयु प्रमाण, उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट आयु प्रमाण। सम्यक मिथ्यात्व, इतनी विशेषता अभी आगे बता रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व, पहले में पहले जो कोई कॉमन है सामान्य से भवनवासी से लेकर ग्रेवेक तक, उसकी बात बताएंगे। उसमें जहाँ जो लागू नहीं होता उसकी बात बाद में बताएंगे। सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 नौ कषायों के उदीरक का भंग सामान्य तिरियंचों के समान है। सम्यक मिथ्यात्व के लिए अंतर्मुख, 16 कषाय 6 नौ कषायों के लिए एक समय से लेकर अंतर्मुख। किंतु इतनी विशेषता ये यहाँ आ गई बात, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सम्यक्व के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। कुछ कम क्यों कहा प्रतिभाताई? हाँ, वहां जाने के पश्चात उन्होंने प्राप्त किया है इसलिए कुछ कम कहे। बहुत अच्छा। त्रिवेद के उदीरक का जघन्य काल क्रम से 10,000 वर्ष और पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। किसकी बात चल रही है? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। भवनवासी को 1 नंबर देना, व्यंतर को 2 और ज्योतिषी को 3। अब वहां की जो जघन्य आयु है क्रम से कितनी है? 10,000 वर्ष भवनवासी की, 10,000 वर्ष व्यंतर की और पल्ले के 8वें भाग प्रमाण ज्योतिषियों। तथा उत्कृष्ट काल 3 पल्ल्य, अब ये भी भवनवासी के लिए, साधिक 1 पल्ल्य व्यंतर के लिए और साधिक 1 पल्ल्य ज्योतिषी के लिए। हाँ नहीं, मगर यहाँ देवियाँ लेनी है ना, देवियों की बात चल रही है। स्त्रीवेद के उदीरक की बात चल रही है ना यहाँ, यानी यहाँ देवियाँ है, ये सब बहुनत्रिक की देवियाँ हैं। यानी जगन्य तो 10-10 और पल्ले का 8वां भाग वो तो समान है। उत्कृष्ट काल 3 पल्ले, साधिक 1 पल्ले और साधिक 1 पल्ले। सौधर्म और ऐशान कल्प में स्त्री वेद के उदीरक का जगन्य काल साधिक 1 पल्ले और उत्कृष्ट काल 55 पल्ले है। वो तो ऊपर के देव, उनकी दो नियोगिनी देवियां भले हो परंतु उनको तो यहाँ के ही
आयु लगी।
हाँ, यहीं पर वो स्त्री वेद के उदीरक कहलाएंगे, ऊपर के देवों में नहीं कहेंगे। शतार और सहस्रार कल्प में हास्य और रति के उदीरक का काल सामान्य देवों के समान है। सामान्य देवों में कितना देखा हमने? 1 समय से लेकर 6 महीने। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्व के उदीरक का जगन्य काल 1 समय। कैसे प्रेरणा बहन? तो एक समय, घोटाला कर रहे हमने, एक समय कैसे गठित किया था? हाँ, कृत्य वेद। बहुत अच्छा, आपको पता है परंतु ख्याल नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए थोड़ा टाइम देंगे तो सोचकर उसका उत्तर मिल जाता है। तो अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव में सम्यक्व के उदीरक का जगन्य काल 1 समय। 1 समय तो सर्वत्र घटित होगा, सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक, और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है। ये उनका ग्रुप अलग बताए इसलिए फिर दोबारा कथन किया। किसको? हाँ, शतार सहस्रार तक को ही अलग निकाला, क्योंकि ऊपर कहाँ तक लिया था? भवनवासी से लेकर नवग्रह में उनको इंक्लूड किया था। वहां पर ऊपर कुछ है क्या? सौधर्म ऐशान में शतार ऊपर क्या लिखा है, सोमेशा इति वेद सदर सहसार हास्यरहित देवोधम, देवोधम हुआ है, देवोधम सतार और सहस्रार तक को ही सामान्य देवों के समान लिखा है। आगे देखते हैं, कुछ विशेषार्थ में आएगी बात, अब आगे देखते हैं। बारह कषाय और छह नौ कषाय उनके उदीरक का जघन्य काल एक समय। यहाँ सोलह कषाय क्यों नहीं लिए मंजू बहन? हाँ तो हाँ समय दृष्टि है, अनंत अनुबंधी का उदय भी नहीं और उदीर्णा भी नहीं, संक्रमण है कि नहीं है? अश्विन भाई कौन सा संक्रमण है?
विद्या
संक्रमण। तो बारह कषाय और छह नौ कषायों के उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तो स्त्रीवेद के उदीरक का कितना काल होगा? वहां स्त्रीवेद की उदीरना ही नहीं होगी, नपुसक वेद की होगी। और पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यानी वो तो उसकी उदीरक तो होगी, उदय चल रहा है तो उदीरना ही चलेगी और जन्म से लेकर मरण तक चलेगी। विशेषण बहुनत त्रिक में क्षायिक समय के सम्मुख वेदक समय दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उनमें सम्यक के उदीरक का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। यानी अंतर्मूर्त इसलिए कहा कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि जीव समय में एक अंतर्मूर्त रहता है, वेदक समय दृष्टि रहता है, तो एक अंतर्मूर्त तक सम्यक प्रकृति की उदीरना करेगी, किंतु अन्यत्र ऐसे जीव की उत्पत्ति होती। अन्यत्र यानी यहाँ देवों की बात चल रही है, बहुनत्रिक को छोड़कर अन्य देवों में सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक। इसलिए सामान्य देवों में और सौधर्म कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में ये आलाप अलग अलग है ना, इसलिए सामान्य की बात अलग बता रहे हैं और एक एक ग्रुप की बात अलग बता रहे हैं। सम्यक के उदीरक का जघन्य काल एक समय बन जाने से वह तत् प्रमाण कहा है।
यहाँ पे कृतकृत्य लिखता है ना, अन्यत्र ऐसे जीव की कृतकृत्य वेदक जीव की उत्पत्ति,
यहाँ लिखा है क्षायिक समय के सन्मुख।
हाँ।
उसी का अर्थ होता है कृतकृत्य, लिखा ना क्षायिक समय के सन्मुख वेदक समय दृष्टि, अभी क्षायिक हाँ। होने जा रहा है ना कृतकृत्य वेदक। हास्य और रति के उदीरक का ओह से जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह महीना पहले बतलाए है। यह काल सामान्य से देवों में प्राप्त होकर भी वह शतार और सहस्रार कल्प में ही प्राप्त होता है, अन्यत्र नहीं, ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। ये कुछ खास बात होगी वहां पर, हास्य का काल छह महीने तक चले
सर्वस्थिति में भी नहीं होती है।
अभी अभी बता रहे हैं ना, अन्यत्र नहीं का अर्थ क्या है, फिर आप एक एक देव का नाम लेके पूछेंगे। इसलिए यहाँ पर सामान्य देवों में वह काल ओग के समान बतलाकर शतार और सहस्रार कल्प में उक्त अर्थ को फलित करने के लिए उसे सामान्य देवों के समान जानने की सूचना की है। शेष कथन सुगम। हाँ अभी कितनी बातें होती है ऐसा, जैसे हमने नपुसक वेद का ज्यादा से ज्यादा कहाँ वो पूर्ण होती है, तो ईशान स्वर्ग में हमने देखा था।
नहीं, पर शाही सभ्य दृष्टि के भी ऐसे परिणाम होते हैं कि उनका अरति और
उनका
हास्य और रति और अरति और शोक का अंतर्मूर्त अंतर्मूर्ति होगा।
अभी मनुष्य में तो होता ही है,
मनुष्य में होता है।
अभी यहाँ देवों में अधिक से अधिक छह महीना काल बताया है, तो वो तो वो गति की अपेक्षा उसकी विशेषता है। अभी नारकी में उत्कृष्ट सातवें नरक में
33 सागर
अरति शोक का उदय बताया, अन्यत्र नहीं बताया, वो वहाँ की विशेषता है और कुछ नहीं।
क्षेत्र के अपेक्षा
शतार सहस्रार फिर आनंद प्राणत है ना शुक्ल लेशा वाले हैं ज्यादा वितरागी है
ना? नहीं नहीं वहाँ पे तो देर आर फोर फैक्टर्स विच वी कंसिडर ना इसके लिए
कौन से फोर
काल क्षेत्र भव और पुद्गल
आप ही बता रहे हैं और आप ही फिर पूछ रहे ऐसा क्यों तो ये समझना कि वो उस
वहाँ पे कुछ विशेषता है
वो उसकी विशेषता है कहाँ कौन से उदय होते हैं हमने देखा ना सहनन का उदय क्यों नहीं होता है वहाँ पर
हड्डियाँ नहीं होती
बंद होता है कि नहीं
होता है
होता है ना तभी तो मनुष्य तीरंज में आएंगे अभी आगे बढ़ेंगे ये तो हमने काल देखा अब अंतर देखने जा रहे उदीर्णा का अंतर
14
नंबर 14 है क्या यहाँ पर अंतरानुगम ये उत्तर प्रकृति उदीर्णा की बात चल रही है नंबर 14 कहा ना
एक जीव की अपेक्षा ही लेना है ना
एक ही जीव की अपेक्षा चल रही है स्वामित्व काल और जो अंतर है
यहाँ
एक जीव की अपेक्षा की ही बात चल रही है देखो अभी पढ़ेंगे 26 पेज पर हम पढ़ रहे हैं निर्देश दो प्रकार का है अंतर का ओह और आदेश ओह से मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है नाना जीव की अपेक्षा क्या कहेंगे मंजू बहन नाना जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व के उदीरक में कितना अंतर पड़ेगा बोलो बोलो मिथ्यात्व का उदय नहीं है ऐसे कितने जीव हो गए
नहीं नाना जीव की अपेक्षा तो
जरा सोचने दो आपको नहीं कुछ हाँ परंतु एक भी जीव में ऐसा कभी होगा क्या नाना जीव की अपेक्षा जब हम सोचते हैं तो ऐसा सोचना है कि उस गुणस्थान का अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा नाना जीवन की अपेक्षा नहीं क्यों सांतर गुण सांतर वाले कौन कौन से गुणस्थान है हाँ दूसरा तीसरा फिर श्रेणी के चौथा पांचवा छठा सातवा तो नहीं वो तो निरंतर है मिथ्यात्व वाला निरंतर है सहयोगी वो निरंतर है अयोगी में और श्रेणी वाले में और दूसरे तीसरे में अंतर पड़ेगा तो मिथ्यात्व तो निरंतर गुणस्थान है तो मिथ्यात्व में हमेशा जीव पाए जाएंगे तो नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व के उदीरक जीव हमेशा होगे कि नहीं होगे तो उसमें कितना अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा परंतु एक जीव की अपेक्षा कब पड़ेगा वो जीव जो समय दृष्टि होगा तो उसका अंतर पड़ा तो कम से कम समय दृष्टि रखो तो कम से कम अंतर लंबे काल तक समय को रखकर वापस मिथ्यात्व में लाना है तो उसका उत्कृष्ट अंतर होगा तो उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परावर्तन होगा कि नहीं होगा होगा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक समय दृष्टि रहेगा मिथ्यात्व के उदीर्णा की बात पूछ रही हूँ मैं हाँ एक जीव की अपेक्षा होगा कि नहीं होगा बोल नहीं होगा क्यों
ये तो ओके की बात है ना
यहाँ भी ओके की बात में पूछ रहे हैं हाँ देखो ये जो आप काल बता रहे हो आप मैं अंतर पूछ रही हूँ अर्ध पुद्गल परावर्तन मिथ्यात्व में रहने का काल है और हम सम्यक्त्व का मैक्सिमम काल पूछ रहे हैं
कुछ कम
क्या
दो चार सब सागर
हाँ फिर भी सम्यक प्रकृति की उदीर्ण अगर कहनी है
तो खाली सम्यक प्रकृति
परंतु यह मिथ्यात्व का अंतर बताना है तो दो छात्र सागर रखो उसको कुछ कम
क्योंकि अंतर गुण तक वो तीसरे गुण का होता है
अब हम यहाँ पढ़ेंगे एक जीव की अपेक्षा ख्याल में ना मैंने जानबूझकर आप मिथ्यात्व में रहने का काल बता रहे और हम मिथ्यात्व का अंतर है सम्यक्त्व में रहने का काल देखना पड़ेगा सम्यक्त्व कहो या बीच में एक समय एक अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व में आता है तो भी वहां तो मिथ्यात्व की तो उदीर्णा है ही नहीं है तो उसको हम अंतर कहेंगे अभी यहाँ पढ़ेंगे ओग से मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है क्योंकि अंतर्मूर्त के लिए समय तो प्राप्त किया और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम दो छासर सागर, कुछ कम वो पहले नीचे आना ही पड़ेगा, नहीं तो मिथ्या तो भी नहीं आ सकता। पूरे दो छासर सागर बिताएगा तो नियम से वो क्षायिक समय दृष्टि होगा। अंतर घटित करने के लिए दोबारा वहां लाना पड़ता है, पहले मिथ्यात्व का उदीरक था, फिर अनुदीरक रहा जब तक समय दृष्टि रहा, वापस मिथ्यात्व में आया तो उदीरक हुआ, तभी हम अंतर कहेंगे।
पहले हमने एक बार वो दो छासर सागर के पश्चात वो पृथक्व सागर भी देखा था,
फिर भी मिथ्यात्व में आए बिना नहीं जाएगा पृथक्व सागर।
अच्छा, वापस मिथ्यात्व में आएगा और वापस
दो छासर सागर से एक अंतर्मूर्त भी बढ़ेगा नहीं, मिथ्यात्व में आकर फिर उसने पृथक्व सागर काल बिताया था, ये जो पहले की बात आपको याद है उसकी। परंतु वहाँ तो मिथ्यात्व का उदीरक हुआ कि नहीं बीच में,
अंतर्मूर्त के लिए।
तो यहाँ पर हम देख रहे थे ओग से मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम दो छासर सागर है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। सम्यक्त्व का जीव सम्यक दृष्टि वेदक समय दृष्टि अंतर्मूर्त के लिए रहा और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में अंतर्मूर्त के लिए रहा, उसका तो काल ही अंतर्मूर्त है, फिर भी यहाँ अंतर पूछ रहे हैं। तो सम्यक्त्व का अंतर यानी मिथ्यात्व में भेजो उसको, या सम्यक मिथ्यात्व में भेजकर वापस सम्यक दृष्टि बना, तो सम्यक प्रकृति का अंतर। और सम्यक मिथ्यात्व का अंतर तीसरे गुणस्थान वाला था, चौथे में जाकर तीसरे में आया या पहले में जाकर तीसरे में आया, उसका अंतर होगा।
दो बार तीसरे में जाना पड़ेगा,
तीसरे में दो बार जाना चाहिए। तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अब यहाँ घटित होगा। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व में रहने का उत्कृष्ट काल है, ख्याल में है ना बात। तो ये समय प्रकृति का और समय मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर बताएंगे। अनंतानुबंधी चतुष्क के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है। क्योंकि चतुष्क में कहा तो उसका एक एक समय वाला एक एक अलग अलग प्रकृति लेना है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम दो छासर सागर है। प्रतिभा ये कैसे होगा? हाँ, वो अनुदीरक हुआ। देखो कोई जीव है औपशमी समय तो के काल में उसने विषय योजना कर दी और दो छासर सागर तक वो समय दृष्टि रहा और फिर मिथ्यात्व में गया, तो कुछ कम दो छासर सागर तक अनुदीरक रहा क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं थी ना। और मिथ्यात्व में जाने पर फिर उसका यानी बंद भी होगा, संक्रमण भी होगा, उसकी उदीरना भी चालू हो जाएगी। आठ कषायों के उदीरक का हाँ उत्कृष्ट अंतर समझ में आया। जघन्य अंतर ऐसा है, अनंतानुबंधी चतुष्क एक साथ चारों को नहीं लेना है। अनंतानुबंधी क्रोध का उदय एक समय के लिए लिया, फिर मान का उदय हो गया तो क्रोध का उदीरक एक समय के लिए रहा। और अंतर में ऐसा ही एक समय के लिए मान का उके वापस क्रोध में आए तो उसको क्रोध का अंतर एक समय के लिए, काल भी एक समय और अंतर भी एक समय। आठ कषायों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है। अभी ओग में ही बता रहे हैं ना यहाँ पर। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है।
ये तो बराबर है, अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण की बात है ना।
हाँ, अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण।
अच्छा, हमने मुनि दशा प्राप्त कर ली।
हाँ, मुनि दशा हुई तो संज्वलन का ही उदय है। हाँ, तो आठ कषायों का
और अंत में जाके
उदीरणा नहीं है, फिर दोबारा वहाँ मिथ्यात्व में लाओ या चौथे गुणस्थान में लाओ चलेगा। या ओक की बात चल रही है ना।
हाँ,
तो क्यों उनको नीचे लाते हो? देव में भेजो ना।
हाँ वो लास्ट पे वो मरण हो गया तो अंतिम समय में मरण होगा तो चौथे गुण स्तर में आ जाएगा।
इन्हें संयम में रहने का काल।
हाँ
कुछ कम एक पूर्व कोटि चार संज्वलन भय और जुगुप्सा के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। अब ये श्रेणी में होगा ना,
चढ़ते समय उपशम किया मरण हो गया एक समय में।
हास्य और रति के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है। अब ये तो चारों गतियों की अपेक्षा है, अब इसका अंतर यानी शोक और अरति शोक का काल है ना। अरति शोक एक समय के लिए उदय हुआ उसका, तो इसका वो अंतर होगा
33 सागर।
और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। साधिक इसलिए कि वहां पर 33 सागर जाने के पहले और या आने के बाद वो एक अंतर मुझ घटित करेंगे। अरति और शोक के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, यानी हास्य रति एक समय के लिए हुई तो अरति शोक का अंतर बताएंगे और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना जो अभी हमने काल में देखा था 6 महीना सतार सहस्रार में, तो वहां अरति शोक का वो अंतर हो गया। उतने काल तक अरति शोक की उदीर्णा नहीं हुई। स्त्रीवेद और पुरुषवेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त अंतर की बात है। काल तो हमने एक समय घटित किया था,
लब्धि अपर्याप्त,
यहाँ अंतर्मूर्त बताना है।
ये छोटा अंतर्मूर्त लब्धि अपर्याप्त हो रहा
है, अंतर्मूर्त और एक समय है। स्त्रीवेद में अंतर्मूर्त और पुरुषवेद में एक समय, ऐसा क्यों, ये पार्शलिटी क्यों? लक्ष्मी राय देखो, स्त्रीवेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय, कौन बताना चाहता है? हाँ कैसे? बहुत अच्छा, पुरुष वेद का उदीरक था उपशम श्रेणी में, वो अनुदीरक हुआ, एक समय मरकर देव में गया, वहां भी पुरुष वेद ही हुआ, तो एक समय का अंतर हुआ। स्त्रीवेद में, स्त्रीवेद में अगर एक समय में मरता है तो देव में पुरुष होगा तो वो नहीं चलेगा, तो उसको स्त्रीवेदी उसी पर्याय में रखना है। तो उसने उपशम श्रेणी पूरी चढ़कर उतरी और फिर उदीरना चालू की, तो उसका अंतर कितना हुआ? एक अंतर मोड़ का।
ये एक काल छोटा होगा कि लब्धि पर्याप्त का काल छोटा होगा? श्रेणी का काल या लब्धि अपर्याप्त का?
लब्धि अपर्याप्त का होगा। ये उसके बीच में क्यों लाया आपने?
क्योंकि स्त्रीवेद वाला लब्धि पर्याप्त उत्पन्न होता है तो नपुंसक वेद का उदय हो जाता है, तो उसका उदीर्ण का अंतर हो गया और वापस त्रिवेद में उत्पन्न हुआ।
आपको जघन्य अंतर लेना है? हाँ। अच्छा,
क्योंकि वहां पे नपुंसक वेद का उदय होता है ना।
बराबर है, वहां पर भी हम ले सकते हैं।
उपशम श्रेणी ले,
यानी लब्धि अपर्याप्त का भव हो सकता है परंतु वहां पर, हाँ वे कौन सा छोटा है वो अल्प भव, तो पहले हमने देखा था शायद 11वें गुणस्थान का काल बड़ा या लब्धि अपर्याप्त का। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, यानी उस पद्धति से भी हो सकता है परंतु एक समय तो घटित नहीं होगा जैसे पुरुष वेद में होता है। अभी इनका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, यानी स्त्री या पुरुष था अनंत काल तक नपुंसक वेद में चला गया, हुआ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। नपुंसक वेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर 100 सागर पृथक्त्व प्रमाण है। ये किसका काल है?
पुरुष
वेद में रहने का काल पृथक्त्व 100 सागर अंतर 100 सागर पृथक्त्व। अब उसमें वो श्रीवेद का भी जोड़ दो,
सौ पल्ले वाला,
सौ पल्ले, फिर भी वो 100 सागर में वो गर्भित कर दिया उन्होंने, विशेषार्थ। अब ये जो हमने अंतर की बात देखी थी, फिर विशेषार्थ में देखते हैं। मिथ्या तो गुणस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट जो अंतरकाल बतलाया है, मिथ्या तो गुणस्थान का हो, वही यहाँ मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य उत्कृष्ट अंतरकाल लिया है। पहले हमने गुणस्थानों के अंतर देखे थे, वही यहाँ घटित होगा। तथा सम्यक दर्शन का जघन्य और उत्कृष्ट जो अंतरकाल है, वही यहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल लिया है। तो सम्यक दर्शन का जघन्य अंतर तो हमने अंतर्मूर्त देखा, उत्कृष्ट अर्धपुद्गल बराबर। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क आदि कषायों के उदीरक का यथायोग्य उत्कृष्ट अंतरकाल घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनके उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय इसलिए बन जाता है, ये आपका प्रश्न था ना प्रतिभा, कि प्रत्येक कषाय की तदनुगत उदीरणा कारण विशेष से कम एक समय तक देखी जाती है। वैसे तो सामान्य से अंतर्मूर्त तक रहते हैं, परंतु कारण विशेष से बताए एक समय तक हो सकती है। किसी जीव के भय और जुगुप्सा की उदीरणा कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक न हो, यह संभव है। क्या कहते हैं? देखो, भय और जुगुप्सा के बारे में कल ही हमने देखे थे, चार विकल्प संभव है उदय में। कौन कौन से? दोनों का उदय हो, हाँ, एक का भी उदय न हो, या भय का या अकेले जुगुप्सा। तो उसमें ये जो उदय न हो जो बात है, दोनों का ही उदय न हो, तो वो तो अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त तक ही अधिक से अधिक हो सकता है कि उदय न हो, परंतु कम से कम एक समय तक ये पोजीशन बन सकती है उदय न हो। कारण विशेष है, उभय की उदीरणा हो गई। वो उदीरणा के भी बाह्य कारण जो कुछ है, उसने कुछ देखा, कुछ हुआ, कुछ सोचा, उन्होंने देखा ना, भय के उदीरणा होने में बाह्य कारण। तो ये एक समय की बात हो सकती है, यानी एक समय में वापस, यानी वो उसका उदय मिल गया था, वापस हो गया, उदय भी हो गया, उदीरणा भी हो गया। इसलिए इनके उदीरक का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। आगे जो हास्य रति अरति और शोक के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय कहा है, वह अपनी सप्रतिपक्ष प्रकृति की उदीरणा कम से कम एक समय तक संभव होने से कहा। बात आई नहीं? तो मेरे ख्याल से मनुष्यों में हास्य रति की उदीरणा, हास्य की उदीरणा कितने काल तक होगी?
हम तो
वो हास्य क्लब लेते तो क्या होता होगा?
थक जाते हैं
आर्टिफिशियली। हाँ, यानी वो अंतर और वो काल भी एक अंतर्मूर्त ही होगा।
हाँ।
परंतु ये नरक में और देवों में वो विशेषता बनती है। मात्र सातवें नरक में निरंतर अरति और शोक का उदय रहता है। क्या कहा? सातवें नरक में निरंतर अरति शोक का ही उदय है।
तथा वहां सभी जिनको लेना है अरति और शोक
का, सातवें नरक वहां जाने के पूर्व भी अंतर्मूर्त काल तक इनका उदय रहता है, क्योंकि वहां जाने वाला कृष्ण लेशा में ही मरता है। तो वहां उसके अरति शोक का उदय होना बिल्कुल, यानी अनुमान से हम घटित करते हैं। इसलिए तो हास्य रति के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा है, और शतार सहस्रार कल्प में हास्य रति का उत्कृष्ट उदय 6 महीना तक संभव है। इसलिए अरति और शोक के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर 6 माह कहा है। ये बात ख्याल में आई? ओग की बात है, जहां जो संभव है वहां घटित करके बताना है, सर्वत्र वो लागू नहीं करना। जब मार्गणा की बात आएगी तो वहां बताएंगे कितना उत्कृष्ट अंतर हो सकता है। स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय तिरियंचों में अनंत काल तक न हो यह संभव है, क्योंकि वो अर्धपुद्गल सके असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक एकेंद्रिय में रहता है या तिरियंचों में रहता है कहेंगे तो नपुसक वेद में रहे वो। तथा इसी प्रकार जो जीव सौ सागर पृथक्त्व काल तक पुरुष वेदी है उसके उतने काल तक नपुसक वेद की उदीर्णा नहीं होती, यह भी संभव है। इसलिए तो स्त्रीवेद और पुरुषवेद के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल और नपुसक वेद के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है। तथा स्त्रीवेद और नपुसक वेद की अनुदीर्णा कम से कम अंतर्मूर्त काल तक न हो, यह भी संभव है। स्त्रीवेद और नपुसक वेद की उदीर्णा नहीं होती, तो अनुदीर्णा न होने
उदीर्णा
हो, क्योंकि एक तो प्रतिपक्ष वेद का वेदन करने वाले जीव के इन वेदों की उदीर्णा नहीं होती, दूसरी बात उपशम श्रेणी में भी इनकी उदीर्णा का अंतरकाल अंतर्मूर्त से कम नहीं बनता। देखो यहाँ क्या कहते हैं, स्त्रीवेद और नपुसक वेद की अनुदीर्णा कम से कम अंतर्मूर्त काल तक न हो, यह भी संभव है। अनुदीर्णा न हो इन्हें
उदीर्णा हो,
एक मिनट कई तरी घोटाला है ऊपर देखेंगे, ये विशेष अर्थ चल रहा है। उदीर्णा न हो संभव है तभी तो इसका अंतर बताएंगे ना,
तो कम से कम अंतर्पुर काल तक उदीर्णा संभव है ऐसे बता रहे
स्त्रीवेद और नपुसक वेद की। उदीर्णा चाहिए, उदीर्णा देखो यहाँ क्या लिख, अंतरानुगम में क्या बताया है, किसका ये पृथक्त्व सौ सागर के बाद उन्होंने क्या बताया है, स्त्रीवेद उसके ऊपर स्त्रीवेद और पुरुष वेद के, यहाँ किसकी बात चल रही है, स्त्रीवेद और नपुसक वेद के,
स्त्रीवेद
और उदीरक का अंतर जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और एक समय है और नपुसक वेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है।
एक समय भी एक साल लिया है ना अंतर्मूर्त, तो एक समय अच्छा पुरुष वेद के
लिए, पुरुष के लिए एक समय लिया, पुरुष वेद में ओघ में घटित होता है हमने देखा था ना, क्योंकि वो श्रेणी में चढ़ा और वहां पर पुरुष वेद का पुरुष वेद रहा। तो यहाँ कहते हैं ये जो जघन्य अंतर है ना, अनुदीर्णा शब्द डाला है उसके बाद उसके बदले उदीर्णा होना चाहिए इसे मुझे लगता है, वहां पर जरा पेंसिल से करके देखेंगे, अनु निकाल के उ लिखना वहां पर, यानी अभी उदीर्णा लिखकर पढ़ेंगे, स्त्रीवेद और नपुसक वेद की उदीर्णा कम से कम अंतर्मूर्त काल तक न हो, यह भी संभव है, क्योंकि एक तो प्रतिपक्ष वेद का वेदन करने वाले जीव के इन वेदों की उदीर्णा नहीं होती।
ये प्रतिपक्ष का अंतर्मूर्त तक वेदन कर रहा है इसे कैसे,
अंतर्मूर्त का दूसरा भाव मिलेगा उसको, इसमें से यह अर्थ नहीं निकालना कि अंतर्मूर्त में वेदों का उदय पलटेगा। अंतर्मूर्त वाला भाव हो सकता है ना, अभी स्त्री वेदी के लिए नपुसक वेद का एक क्षुद्र भाव, वो भी अंतर्मूर्त है, भले हमें उसका नाम दे दिया क्षुद्र भाव, फिर भी उसका काल अंतर्मूर्त तो है ही, तो अंतर्मूर्त तक नपुसक वेदी हुआ या पर्याप्त भाव को ही लिया पुरुष वेद का या नपुसक वेद के लिए, स्त्री वेदी वाला या पुरुष वेद वाला एक भाव किया अंतर्मूर्त का, वापस नपुसक वेदी हुआ, तो एक भाव लेना अंतर्मूर्त तक यानी एक भाव तक। अब दूसरा दूसरी बात, एक तो इन्हें उसने अन्य वेद वाला एक भाव किया अंतर्मूर्त वाला, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमने दोनों सोची थी ना यहाँ पर कि उपशम श्रेणी में भी इनकी उदीर्णा का अंतरकाल अंतर्मूल से कम नहीं बनता, क्योंकि उसको उसी भाव में रखना है, स्त्री वेदी को उपशम श्रेणी चढ़ाकर वापस फिर स्त्री वेदी की उदीर्णा करना है, नपुसक वेद का भी उदीर्णा कर रहा था, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा वापस उदीर्णा शुरू हो गई, तो अंतर्मूल से कम तो नहीं बनता, ये बात यहाँ बताना चाहते। क्योंकि जो इन वेदों के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़ा है उसके इनकी अनुदीर्णा होकर पुनः उदीर्णा होने में अंतर्मूल से कम काल नहीं लगता, इसलिए उनके उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा है। किंतु पुरुष वेद के विषय में यह बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा था उसका अनुदीरक हो गया एक समय के लिए, मरकर देव में हुआ वहां भी पुरुष वेद ही हुआ, तो एक समय का अंतर वहां घटित होता है पुरुष वेद में, अन्य में नहीं हो सकता, क्योंकि उपशम श्रेणी में इसकी अनुदीर्णा होने पर एक समय तक ही वह इसका अनुदीरक रहे और दूसरे समय में मरकर उसके देव हो जाने पर
उदीरक हो जाए,
पुनः पुरुष वेद का उदीरक हो जाए यह संभव है, इसलिए उसके उदीरक का जघन्य अंतर एक समय कहा है। ख्याल में आई बात ये विशेषार्थ की? अब आगे बढ़ेंगे, ये तो हमने ओघ में देखा, अब आदेश में देखेंगे। ओग में तो जहाँ जो घटित होता है हाथ से रति वगैरह की बात ओग में सब कुछ बता दिया, आदेश में जहाँ होती है वहीं पर बताएंगे। नारकियों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क हास्य और रति के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है।
तो सातवें सागर नरक में भी हास्य रति का उदय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम अंतर बताया ना 33।
कुछ कम 33, हाँ, वो जो उत्कृष्ट काल बताया था रति शोक का।
हाँ। नहीं, मैंने आप पूछा था ना कि वहाँ पे हास्य रति का उदय ही नहीं है, तो
अच्छा उदय होता ही नहीं है क्या?
पर यहाँ पे उदय बताया है।
उदय बताया, यानी कहाँ होता है तो सातवें नरक में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। देखो मिथ्यात्व का तो अंतर हमने देखा, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है, सम्यक प्रकृति का भी जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है, अब सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त में वापस तीसरे में आना चाहिए, अनंतानुबंधी चतुष्क का
अंतर्मूर्त होगा ना मेन में
जघन्य अंतर
यहाँ पे।
अब अन्यत्र एक समय जो कहा यहाँ क्यों नहीं लिया? कुछ कम 33 सागर वो तो ठीक है उसकी,
हाँ, वो तो बराबर है,
पर अन्यत्र सभी प्रकृतियों के जो एक समय घटित किया था वो यहाँ क्यों नहीं लिया? ऊपर क्या है? कस्य रदि जनन्तम् कस्य तैत्तिसं सागरोमाणि देशुनानि।
ये अनंतानुबंधी का हमने ओग में जो एक समय देखा था,
हाँ हाँ,
वो कैसे घटित होगा?
यहाँ उन्होंने बताया था ना,
हाँ हाँ,
क्रोध माया वगैरह की बात,
अच्छा चतुष्क
यहाँ लिखा ना, प्रत्येक कषाय की तदनुगत उदीर्णा कारण विशेष से कम एक समय तक देखी जाती है। वो कारण विशेष यहाँ क्या बताया पता नहीं, यहाँ तो अंतर्मूर्त बताया भी, देखेंगे इसके विशेषार्थ में आती बात। 12 कषाय अरति शोक भय और जुगुप्सा, उसके उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अनंतानुबंधी को इसलिए अलग निकाला कि विषय योजना वाले की अपेक्षा कुछ कम 33 सागर अंतर घटित, वैसे 12 कषाय वगैरह में नहीं घटित होता, वो तो उसका हर समय उसका उदय चल ही रहा है हर एक को,
यहाँ पे तो बारह कसर में भी जगत
अंतर्मूर्ति एक समय नहीं लिया, एक समय हमने अन्यत्र ओग में वगैरह देखा,
यहाँ पे नरक में कहाँ पे भी नहीं लिया।
परंतु नारकी में काल देखा था हमने एक समय, क्या नहीं देखा था काल की मार्गणा? देखो नारकियों में जब हमने काल देखा था देखो 23 पेज पर 16 कषाय हास्य रति भय जुगुप्सा के उदीरक का जघन्य काल एक समय है,
तो अंतर भी
तो अंतर में ना एक समय नहीं लिया उन्होंने। और यह भी हम नारकी में ही देख रहे हैं, यहाँ 12 कषाय वहां 16 कषाय में एक समय घटित किया
हाँ।
और यहाँ अंतर्मूर्त देख रहे हैं। अच्छा यानी वापस उसी कषाय में आने के लिए अंतर्मूर्त लगता है।
चार समय
यानी ऐसा हो सकता है कि मान में एक समय में पलट कर माया लोग हो गया फिर भी वापस क्रोध में आने के लिए अंतर्मूर्त लगेगा, ऐसा अर्थ निकलता है
हाँ,
ना
हाँ।
परंतु ओग में तो ऐसा नहीं है,
ओग में तो एक समय
ओग में तो ले लिया था एक समय। देखेंगे आगे कुछ लिखते हैं क्या। नारकियों में नपुसक वेद के उदीरक का अंतर काल नहीं है। मंजू बहन क्यों नहीं है? नारकियों में नपुसक वेद के उदीरकों का अंतर काल नहीं है, हाँ वहां मात्र नपुसक वेद का उदय है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानने चाहिए, इसी प्रकार पहली पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए तथा इन नरकों में हास्य रति के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। सातवें में हमने उत्कृष्ट अंतर कितना देखा था? कुछ कम 33 साल सामान्य में और सातवें में, और जघन्य अंतर तो सर्वत्र एक अंतर्मूर्त कहा है। अब विशेषार्थ, नरक में अरति शोक भय और जुगुप्सा का वेदक जीव अवेदक होकर पुनः अंतर्मूर्त काल के पहले उनका वेदक नहीं होता, ये स्पष्ट में लिखते हैं। इसलिए उनके उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि अरति और शोक का अवेदक होने पर ऐसा जीव हास्य रति का अंतर्मूर्त काल तक नियम से वेदन करता है, नरक में भी हो एक समय के लिए नहीं अंतर्मूर्त तक के लिए हाँ? ये जो अभी बताया वैसे कषाय के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं यहाँ पर, फिर भी देखेंगे अन्य मार्गणाओं में क्या क्या बातें आती हैं तो उसके अनुसार हम फिर थोड़ा अनुमान लगाएंगे।
पर वहाँ पे तो हर्ष और रति का जगत काल भी एक समय याद उदीरक का एक समय बताया है
हाँ।
सो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है
उदीरक का काल बताया परंतु यहाँ अंतर में अरतिशोक के अंतर में अंतर्मूर्त का है ना
हाँ। क्योंकि उदीरक का एक समय बताया तो अंतर भी एक समय हो सकता है, पर यहाँ पे अंतर्मूर्ति बता रहे हैं।
नारकियों में भी एक समय लिया था
हाँ।
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्ति बताया था। ऐसा हो सकता है ना एक समय मरण की अपेक्षा ना, पर मरण हास्य रति में मरण होगा क्या?
हाँ हो सकता है ना, सभी दृष्टि जीव को तो छठे गुण स्थान तक हो सकता है,
यानी वो काल घटित होता है पर अंतर घटित नहीं होता, ये बात हो सकती
हाँ।
है मरण की अपेक्षा किसी मार्गणा में काल एक समय है परंतु अंतर नहीं, उसका अर्थ वो तो
अंतर्मुख तक रहेगा,
जन्म के समय मरण के समय घटित करेंगे तो ही हो सकता है, तब हो सकेगा।
हाँ, वो मरण की अपेक्षा एक समय होगा,
इसीलिए यहाँ भी कषाय में एक समय घटित करते हैं, परंतु ओग में उन्होंने अंतर में भी एक समय लिया था।
सो कषायों में भी कहाँ पे भी
अंतर एक समय लिया था, ओग में अंतर एक समय लिया था, और वहाँ उदीरक में एक समय लिया था नारकियों में। अभी उसकी बात आएगी, अन्य मार्गणाओं में देखेंगे, हम तिर्यंच देव नारकियों में देखेंगे, तिर्यंचों में मिथ्यात और अनंतानुबंधी चतुष्क के उदीरक का जघन्य अंतर, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्ले हैं, शल्य हुआ है। मिथ्यात्व का अंतर है ना, सम्यक दृष्टि हुआ,
सम्यक में रहने का था,
यानी पहले मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्व में वहाँ उत्पन्न हुआ, समय दृष्टि हुआ, लास्ट में जाकर फिर मिथ्यात्व में आया, तो कुछ कम तीन पल्ले। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का भी ऐसे लिया,
विषय योजना कर दी,
वहाँ समय दृष्टि हुआ, विषय योजना की, समय दृष्टि हुआ तो उसका तो उदीरक था ही नहीं, और
वैसे भी
विसर्जना
तो
की जरूरत नहीं है वहां पर। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है। अंतर कितना देखा था हमने, सम्यक्त्व का जघन्य अंतर, अंतर में और उत्कृष्ट अंतर
कुछ कम अपने नहीं, सम्यक्त्व का उदीरक का उत्कृष्ट अंतर
आप काल बता रहे हैं,
कुछ कम अपनी अपनी स्थिति ना, तेरे सम्यक्त्व का
ओग में तो अर्ध पुद्गल परावर्तन हाँ। देखा था, अब यहाँ कितना कहना,
यहाँ पे तिरियंत में तो कुछ कम तीन पल ना,
यहाँ भी अर्ध पुद्गल कहो ना,
अच्छा ये तिरियंत है, सॉरी
तिरियंत में असंख्यात पुद्गल परावर्तन रह सकता है, परंतु सम्यक प्रकृति का अंतर देख रहे हैं, यानी एक बार सम्यक दृष्टि हो गया है,
पंचदिव्य सम्यक तो प्राप्त करके,
तो अभी तो उपार्ध पुद्गल परावर्तन काल तक यहाँ रहेगा, सम्यक तो प्राप्त करके ही निकलेगा यहाँ से। तो ओग के समान लिखा है ना, ओग के समान है अर्ध पुद्गल, उत्कृष्ट अंतर अर्ध
पुद्गल
और जघन्य अंतर
अंतर्मुख,
एक अंतर्मुख, समय दृष्टि रहा, मिथ्यात्व में आया, वापस सम्यक्त्व, तीसरे गुणस्थान में था, या तो मिथ्यात्व में आया, सम्यक्त्व में जाकर अंतर्मुख में वापस आया, तो ही अंतर घटित होगा। और उत्कृष्ट अंतर के लिए अभी मिथ्यात्व में रखो, अंतर अर्ध पुद्गल परावर्तन करीब समय, कल से तिरियंचों की बात यहाँ से शुरू से ले लेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा रे कहो। अश्विन
नमो अरियंताणम, नमो चित्ताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप्तसावणम, नमो अरियंताणम, नमो चित्ताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप्तसावणम, नमो